प्रेमचंद तथा प्रेमचंद युग के उपन्यासों में नारी जीवन का चित्रण, पृष्ठ संख्या 30। सन 1918 से 1936 तक का समय हिंदी उपन्यास साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद युग के नाम से अभिहित हुआ। वस्तुतः हिंदी के वास्तविक उपन्यास का श्री गणेश ही प्रेमचंद जी से हुआ है। हिंदी उपन्यासों को उसका वास्तविक गौरव प्रेमचंद द्वारा ही प्राप्त हुआ है। डॉक्टर एस एन गणेशन के मतानुसार इन्वर्टेड कॉमापन मानव चरित्र की पहली पहचान हिंदी पाठक को प्रेमचंद के द्वारा मिली। संदर्भ ग्रंथ हिंदी उपन्यास साहित्य का अध्ययन डॉक्टर एस एन गणेशन, पृष्ठ संख्या 58। प्रेमचंद का हिंदी में आविर्भाव सन 1918 में सेवा सदन के प्रकाशन के साथ हुआ। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने इस उपन्यास के संदर्भ में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सेवा सदन उपन्यास कला और समस्याओं की पकड़ तथा चित्रण दोनों दृष्टियों से पहला परिपक्व उपन्यास है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, डॉक्टर रामदरस मिश्र, पृष्ठ संख्या 44। प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यास महज आदर्शवाद या वायवीय रमाख्यानों की परिधि में अवस्थित था। उसे यथार्थ से जोड़ने का कार्य प्रेमचंद जी ने ही किया। वे उपन्यास को आकाश की धरती पर ले आए। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में, इन्वर्टेड कमापन, चंद्रकांता और तिलस्मी होशरूबा के पढ़ने वाले लाखों थे। प्रेमचंद ने इन लाखों पाठकों को अपनी तरफ ही नहीं खींचा, चंद्रकांता में अरुचि भी पैदा की। जनरुचि के लिए उन्होंने नए मापदंड कायम किए और साहित्य के लिए नए पाठक और पाठिकाएं कायम किए। यह उनकी जबरदस्त सफलता थी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद और उनका युग, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पृष्ठ संख्या 31। पैराग्राफ चेंज। वैसे तो प्रेमचंद जी की ख्याति सेवा सदन ब्रैकेट में 1918 के प्रकाशन के कारण हुई, परंतु उर्दू में उनका लेखन तो सन 1903 से शुरू हो गया था। यह भी एक विचित्र संयोग है कि प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास असरारे मायाविद ब्रैकेट में देवस्थान रहस्य 9 अक्टूबर 1903 में बनारस के उर्दू पत्र आवाज़े खलक में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ और ठीक 33 वर्षों बाद उसी 8 अक्टूबर को उनका निधन भी हुआ। वैसे इसके भी पूर्व उनका एक और उपन्यास रूठी रानी आया था, जो सामंतकालीन परिवेश से युक्त एक अत्यंत सामान्य उपन्यास है। यह उनका एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। औपन्यासिक परिवेश भले ही सामंतकालीन हो, परंतु लेखक ने अपने मिजाज का परिचय उसकी नायिका उमादे के द्वारा दे दिया है, पृष्ठ संख्या 31। उसका विवाह मारवाड़ के राव मालदेव के साथ होता है। विवाह के उपरांत अत्यधिक मद्यपान के कारण राव मालदेव भारीली नामक परिचारिका को उमादे समझकर प्रथम रात्रि उसके साथ बिताते हैं। उमादे को जब इस बात का पता चलता है तो वह अत्यंत क्रोधित होती है और आजीवन राजा से अलग रहती है। यद्यपि मालदेव की मृत्यु के बाद वह तत्कालीन प्रथानुसार सती हो जाती है। यहाँ उमादे के चरित्र में हमें एक तेजस्वी और स्वाभिमानी नारी के दर्शन होते हैं। पैराग्राफ चेंज। असरारे मायाविद में लेखक ने एक महंत जी और उनके चेले चाटों की पोल खोली है। यहाँ नारी पात्र मुख्य रूप से न आकर सामान्य भक्तिनों और वेश्याओं के रूप में आए हैं। सन 1906 में प्रेमचंद जी का हम खुरमा ओ हम सबाब ब्रैकेट में प्रेमा प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने विधवा विवाह की समस्या को उठाया है, जिसका संबंध नारी जीवन से है। यदि उपन्यास बाद में कुछ परिवर्तन के साथ सन 1929 में प्रतिज्ञा के नाम से प्रकाशित हुआ। इसका नायक अमृत राय एक आदर्शवादी युवक है, प्रेमा उसे चाहती है। अमृत राय पूर्णा नामक एक विधवा से विवाह कर लेता है। प्रेमा दाननाथ से विवाह करती है, जो एक बार अमृत राय को मारने के लिए धावा बोल देता है। पूर्णा दाननाथ पर गोली चला देती है और बाद में स्वयं भी मर जाती है। प्रेमा और अमृत राय पुनर्विवाह के बंधन में बन जाते हैं और इस प्रकार इस उपन्यास में लेखक ने रामकली, पूर्णा तथा प्रेमा इन तीनों स्त्रियों के विधवा विवाह कराए हैं। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं जिन्होंने विधवा विवाह का खुलकर पक्ष लिया है। इस उपन्यास के नारी पात्र अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का परिचय देते हैं और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति उनके मन में विद्रोह की भावना मिलती है। सन 1907 में उनका किसना उपन्यास प्रकाशित हुआ, जो बाद में 1930 में गबन नाम से अपने परिमार्जित एवं परिवर्तित रूप में प्रकाशित हुआ। सन 1912 में जलवाय इसार का प्रकाशन हुआ, उसका हिंदी संस्करण वरदान है। इसमें प्रेमचंद जी ने प्रताप चंद्र और विरजन के प्रेम की असफलता और अंत में उसके उदात्तीकरण को चित्रित किया है। आर्थिक विषमता के कारण प्रताप चंद्र जैसा शिक्षित एवं गुणवान युवक विरजन को प्राप्त नहीं कर सकता और उसका विवाह कमलाचरण नामक एक आवारा बदमाश कबूतरबाज युवक से हो जाता है। दुर्व्यसन के कारण कमलाचरण जल्दी ही काल कलवित हो जाता है और विरजन को अकाल वैधव्य भोगना पड़ता है। वह अपना ध्यान लिखने पढ़ने में केंद्रित करती है और अल्प समय में ही विदुषी एवं कवित्री के रूप में उभरने लगती है। इस प्रकार विरजन के द्वारा प्रेमचंद जी ने नारी उत्थान एवं नारी प्रवृत्ति के नए क्षितिजों का उद्घाटन किया है। उपर्युक्त औपन्यासिक कृतियों की गणना प्रेमचंद जी की प्रारंभिक रचनाओं में होती है। वरदान का प्रकाशन सेवा सदन के बाद हुआ, परंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है वह सेवा सदन के पूर्व की रचना है। सेवा सदन की सुमन हिंदी उपन्यास साहित्य की पहली नायिका है जिसका चित्रण मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ है। सेवा सदन अनमेल विवाह, विधवा समस्या, वैश्या समस्या, भ्रष्टाचार जैसे आयामों को स्पष्ट करता है। दहेज अभाव में सुमन जैसी योग्य सुशील एवं सुंदर लड़की का विवाह योग्य पात्र से नहीं हो सकता और उसे गजाधर जैसे कुपात्र के गले मर दिया जाता है। पृष्ठ संख्या 32। अर्थाभाव में सड़ती सुमन वैश्या जीवन को अंगीकृत इसलिए करती है कि सामाजिक मूल्यों पर से उसका विश्वास उड़ जाता है। वह पहले समझती थी इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मैं दरिद्र ही सही, दीन सही, पर अपनी मर्यादा पर दृढ़ हूँ। किसी भले मानुष के घर में मेरी रोक नहीं, कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। वह ब्रैकेट में भोली वैश्या कितना ही भोग विलास करे पर उसका कहीं आदर तो नहीं होता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद, पृष्ठ संख्या 20। परंतु होली वाले दिन नगर के प्रतिष्ठित सज्जन पद्म सिंह के यहाँ भोली का जो सत्कार होता है उससे सुमन के विश्वास पर चोट पहुँचती है। यथा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आज तक मैं समझती थी कि कुचरित्र लोग ही इन रमणियों पर जान देते हैं, किंतु आज मालूम हुआ कि उनकी पहुंच सुचरित्र और सदाचार पुरुषों में भी कम नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 24। इस प्रकार हम देखते हैं कि धन द्वारा प्राप्त सुख नहीं वरन धन द्वारा प्राप्त सम्मान एवं प्रतिष्ठा सच्चरित्र व्यक्ति को भी पतनोन्मुख करती है। पुरुष अप्रामाणिक, घूसखोर एवं मक्कार बन जाता है तो स्त्री वैश्या बन जाती है। उपन्यास का एक पात्र कुंवर अनिरुद्ध सिंह वैश्या समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करता हुआ कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह मीना बाजार हम लोगों ने सजाया है, यह चिड़िया हम लोगों ने ही फांसी है, यह कठपुतलियां हमने ही बनाई है। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहां दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन हराम खारी के सिवा और कहां जा सकता है। जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत होगा उसी दिन दाल मंडी उजड़ जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 192। पैराग्राफ चेंज। सेवा सदन के पश्चात प्रेमचंद जी की प्रेमाश्रम ब्रैकेट में 1920, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1926, गबन 1930, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 आदि उपन्यास आते हैं। इनमें प्रेमचंद जी ने सुखदा, निर्मला, जालपा, सोफिया, सकीना, धनिया जैसे कुछ सशक्त नारी पात्र दिए हैं। प्रेमचंद जी के नारी पात्रों में संघर्ष है, जीती विषा है, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से टकराने का साहस है। वस्तुतः प्रेमचंद जी चाहते हैं कि हमारे देश का नारी वर्ग हजारों वर्ष की शास्त्रानुमोदित गुलामी से बाहर आए, गबन की जालपा को प्रारंभ में आभूषण प्रिय बताया गया है, परंतु अपने इसी आभूषण प्रेम के कारण जब रमानाथ ब्रैकेट में उसका पति भाग जाता है, तब मानो उसका कायाकल्प ही हो जाता है। गोदान का होरी तो परंपरा और मर्यादा के नाम पर मिटता है, परंतु परंपराओं और प्रगति विरोधी रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह करने की शक्ति धनिया में है। होरी की मृत्यु के समय गांव वाले लोग धनिया को होरी का गोदान करने के लिए कहते हैं, तब वह घर से 20 आने पैसे लेकर आती है, यही उसका गोदान है। डॉक्टर मनोहर बंदोपाध्याय ने इस संदर्भ में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, एन ऑर्डिनरी विलेज वुमेन वुड हैव बोरोड मनी अगेन फ्रॉम द मनी लेंडर्स टू ऑफर द काउ कॉमा बट धनिया इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन एंड किक्स द मॉर्टिफाइंग ट्रेडिशन विथ हर फैक्ट फुल स्टॉप सी ब्रिंग्स द 20 आनास दैट हॉरी हैज अर्न बाय मेकिंग रॉब्स फुल स्टॉप सी गिव्स द मनी टू द प्रिंस विथ इम्फेटिक स्टेटमेंट डैश इन्वर्टेड कॉमा ओपन देयर इज नाइदर काउ इन द होम नॉर अ हाइफर नॉर एनी मनी फुल स्टॉप ऑल दैट देयर इज इन होम एज दीज कॉइन एंड दिस इज हिज गोदान इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ लाइफ एंड वर्क ऑफ प्रेमचंद पृष्ठ संख्या 253 पैराग्राफ चेंज पृष्ठ संख्या 33। इस प्रकार हम देखते हैं कि धनिया बड़ी ही जीवट वाली और जुझारू औरत है। गोदान की मालती प्रारंभ में चुलबुली और फैशनेबल बताई गई है, परंतु बाद में वह भी जनसेवा के पद पर अग्रसर होते हुए संघर्षशीलता और कर्मठता की ओर मुड़ पड़ती है। प्रेमचंद जी के अधिकांश नारी पात्र तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन के किसी न किसी आयाम से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। अनपढ़ होते हुए भी गोदान की सीलिया की माँ जो आक्रोश व्यक्त करती है वह गौर तलब है। पंडित दाता दीन का लड़का माता दीन सीलिया चमारिन के साथ फंसा हुआ है। एक प्रसंग में सीलिया की माँ माता दीन को लताड़ते हुए कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दे दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद के नारी पात्र बदलते जमाने के तेवरों का तीखापन लिए हुए है। गोदान की धनिया तो प्रेमचंद के नारी पात्रों में अप्रतिम सी लगती है। पैराग्राफ चेंज प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक पांडेय बेचन शर्मा उग्र भगवती प्रसाद वाजपेयी ऋषभ चरण जैन जयशंकर प्रसाद सियाराम शरण गुप्त वृंदावन लाल वर्मा जैनेन्द्र आदि की परिगणना कर सकते हैं। कौशिक जी अपने माँ और भिखारिन जैसे उपन्यास में नारी का आदर्शवादी दृष्टिकोण से चित्रण करते हैं। निम्न कोटि के नारी पात्रों में उच्च मानवीय गुणों का दिग्दर्शन यह कौशिक जी की अपनी विशेषता है। उग्र जी के इस समय के उपन्यासों में घंटा दिल्ली का दलाल बुधवा की बेटी आदि उपन्यास प्रमुख है। घंटा में लेखक ने उच्च वर्गीय लोगों की पोल खोली है, अतः वहाँ उच्च वर्गीय लोगों में स्त्री पुरुष के अवैध संबंधों को चित्रित किया गया है। दिल्ली का दलाल उपन्यास में वैश्य जीवन की नारकीयता को उद्घाटित किया गया है। नारी चित्रण की दृष्टि से उनका बुधवा की बेटी एक सशक्त उपन्यास है। रधिया भंगिन अत्यंत सुंदर युवती है। गांव के जमींदार का बेटा घनश्याम उसे प्रवंचित कर उससे शारीरिक संबंध स्थापित करता है और बाद में अपनी बात से मुकर जाता है, अतः रधिया उसका प्रतिशोध समूचे पुरुष वर्ग से लेती है। वह लोगों को अपने प्रेम पास में फांस कर उन्हें पागल और बर्बाद कर देती है। पैराग्राफ चेन भगवती प्रसाद वाजपेयी ने प्रेम पथ पतिता की साधना त्यागमयी आदि उपन्यासों में अधिकांशतः नारी जीवन की व्यवस्थाओं को आदर्शात्मक ढंग से चित्रित किया है। ऋषभ चरण जैन के उपन्यासों में समाज की यथार्थ का नग्न चित्रण हुआ है। दिल्ली का व्यभिचार दिल्ली का कलंक वैश्य पुत्र बुरखे वाली दुराचार के अड्डे तीन इक्के जनानी सवारियां जैसे उपन्यासों में नारी के लैंगिक शोषण को लेखक ने विशेषतः रेखांकित किया है। उनके भाई गदर, तपोभूमि जैसे उपन्यासों में तेजोदीप्त नारी पात्रों का चित्रण है। तपोभूमि जैनेन्द्र कुमार के सहलेखन में लिखा गया उपन्यास है, जिसमें नारी के दो रूप मिलते हैं। एक धरणी, जहां भावुकता, ममता, त्याग और बलिदान के भाव से युक्त है, पृष्ठ संख्या 34। वहां शशि अधिक व्यवहार कुशल एवं स्वार्थी है, परंतु इन दोनों नारियों में लेखक ने आत्माभिमान कूट कूट कर भरा है। गदर में तो लेखक ने विद्रोहात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। नाना साहब पेशवा की बेटी मैना उनके दीवान अजीमुल्लाह खां से प्रेम करती है। अजीमुल्लाह खां एक देशभक्त युवक है। अंग्रेजों के प्रति नाना साहब में विद्रोह की भावना को भड़काने वाली भी मैना ही है। बाबा, तुम मेरे पिता क्यों हुए? तुम मेरा अनादर करने वालों को दंड देने की शक्ति नहीं रखते, तो लो मेरा गला घोट दो। मैं अपने जीते जी अपना यह अपमान नहीं सह सकती। बाबा, तुम्हें शिव बाबा की याद नहीं आती क्या? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ गदर उपन्यास, लेखक ऋषभ चरण जैन, पृष्ठ संख्या 48। इस प्रकार मैना के रूप में हमें एक अत्यंत उज्जवल और तेजोदीप्त नारी चरित्र मिलता है। प्रसाद जी के तितली और ईरावती उपन्यास में तो आदर्शवादी रोमांटिक दृष्टिकोण ही मिलता है, परंतु कंकाल में उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। इसमें लेखक ने हमारे तथाकथित कुलीन वर्ग के लोगों की बखिया उधेड़ी है। अभिजात वर्ग की वर्ण संकीर्ण सृष्टि के लिए यह उपन्यास उल्लेखनीय रहेगा। प्रेमचंद्र जी के उपन्यास प्रसाद जी के गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले लेखक थे, परंतु जब इसे पढ़ा तो फड़क उठे और मारी खुशी के लिखा। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। यह प्रसाद जी का पहला ही उपन्यास है, पर आज हिंदी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जिन्हें इनके सामने रखा जा सके। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ कलम का सिपाही, अमृत राय, पृष्ठ संख्या 486। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद काल में नारी कुछ कदम आगे बढ़ी है। अब वह केवल श्रद्धा नहीं रही, रीति काल की भांति केवल भोग्या भी नहीं रही, केवल पत्नी भी नहीं रही। वह जीवन संघर्ष में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाने लगी है। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होने के साथ साथ वह सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करने लगी है। हालांकि अभी भी स्त्री पुरुष की गैर बराबरी बरकरार है, किंतु पुरुष के अधिकार क्षेत्र के वितान में एक छेद अवश्य पड़ गया है। हेडिंग है ग प्रेमचंदोत्तर काल के उपन्यासों में नारी जीवन का चित्रण, ब्रैकेट में 1936 से 1960, पृष्ठ संख्या 34। यहाँ पर प्रेमचंदोत्तर काल के 60 तक के उपन्यासों में नारी जीवन की गतिविधि का लेखा जोखा लेने का उपक्रम है, क्योंकि 60ों परांत उपन्यासों को तो अपने विषय के संदर्भ में उपजीव्य उपन्यासों के ही रूप में रखा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रेमचंदोत्तर काल के उपन्यासों को हम स्वतंत्रता पूर्व, ब्रैकेट में 1936 से 1947, और स्वातंत्र्योत्तर 1947 से 1960 जैसे विभागों में विभक्त किया गया है। पहला, स्वतंत्रता पूर्व प्रेमचंदोत्तर काल, ब्रैकेट में 1936 से 1947। प्रेमचंद युग में उपन्यास की अनेकानेक प्रवृत्तियां विकसित हुई, जैसे सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, समाजवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास एवं व्यंग्यात्मक उपन्यास आदि। पैराचीन सामाजिक उपन्यासों में जहां तक नारी का संबंध है, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, नारी स्वतंत्रता, नारी शिक्षा, अनमेल विवाह प्रश्नों को उकेरा गया है। उक्त सीमा में अंग्रेजी के सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जीजा जी 1943 तथा फागुन के चार दिन 1955, पृष्ठ संख्या 35 जैसे उपन्यास आते हैं, जिनमें उन्होंने निरीह नारी के प्रति पुरुष समाज की लंपटता तथा कामुकता का नग्न चित्रण किया है। भगवती प्रसाद वाजपेयी में सुधारवाद के साथ भावुकता भी दृष्टिगोचर होती है। स्त्री पुरुष का शाश्वत प्रेम उसका प्रिय विषय है, और इस काल में उनके पतिता की साधना 1936, पिपासा 1937, दो बहनें 1940, निमंत्रण 1942 आदि उपन्यास उपलब्ध होते हैं। वाजपेयी जी का दृष्टिकोण आदर्शवादी है और वे नारी के प्राचीन भारतीय आदर्श के प्राय पक्षधर रहे हैं। इस कालावधि में सियाराम शरण गुप्त का एक महत्वपूर्ण उपन्यास नारी ब्रैकेट में 1937 उपलब्ध होता है। हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त की नारी विषयक अवधारणा को रेखांकित करने वाली निम्नांकित पंक्तियां बहुचर्चित रही हैं। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी उपन्यास में सियाराम शरण ने अपने अग्रज की परिकल्पना की प्रतिमूर्ति सामने रखी है। नारी उपन्यास की जमुना एक असहाय एवं विवश नारी है, जिसका पति उसे आर्थिक एवं सामाजिक संघर्षों के बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है। वह अपने पुत्र हल्ली के साथ तमाम प्रकार के संघर्षों को झेलते हुए अनेक वर्षों तक अपने पति की प्रतीक्षा करती है और अंततः अपने पति के मित्र अजीत चौधरी से विवाह कर लेती है, जिसने उसके पति को ढूंढने में उसकी जी जान से सहायता की थी। निर्मला नारी तथा त्याग पत्र, इस उपन्यास त्रयी ने नारी जीवन की त्रासद स्थितियों को उकेरा है। पैराग्राफ चीन, ऋषभ चरण जैन के प्रस्तुत काल के उपन्यासों में चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1937, मैं खाना 1938, तीन इक्के 1938, जनानी सावरिया 1939 आदि उपन्यास मिलते हैं, जिनमें मुख्यतः वैश्या समस्या, सामंतकालीन विलासिता तथा आभिजात्य वर्ग में व्याप्त यौन विकृतियों का चित्रण हुआ है। चंपाकली वैश्या होते हुए भी प्रेम के आदर्श को सामने रखती है। जनानी सावरिया में अनीति धामों में लड़कियां कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पहुंच जाई जाती हैं, उसका यथार्थवादी चित्रण लेखक ने किया है। उषा देवी मित्रा के दो उपन्यास पिया और जीवन की मुस्कान क्रमशः 1937 और 1939 में नारी जीवन की समस्याओं को उकेरा गया है। पिया बाल विधवा पपीहरा उर्फ पिया की कहानी है। वह जमींदार सुकांत की भतीजी है, किंतु अपने स्वतंत्र विचारों के कारण पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है। इसमें लेखिका ने विधवा के संबंध हिंदू धर्म की सड़ी गली रूढ़ियों पर व्यंग्य किया है, तो जीवन की मुस्कान में नारी जीवन की असहायता तथा वैश्या समस्या को केंद्र में रखा गया है। राधा राधिका रमन प्रसाद सिंह के आलोच्य काल के उपन्यासों में राम रहीम नारी जीवन से संबद्ध है। इसमें बेला और बिजली नामक दो नारी पात्रों के माध्यम से भारतीय नारी की धर्मपरायणता, त्यागमयता, उससे उद्बुद्ध यातना तथा पाश्चात्य संस्कारों में पत्नी स्त्री की धर्म विमुखता, भोगवादिता और मौज मस्ती का चित्रण लेखक ने किया है। दो नारी चरित्रों को आमने सामने रखकर उनकी चरित्रगत विशेषताओं के द्वारा प्रकारांतर से लेखक ने भारतीय समाज को सावधान किया है। पृष्ठ संख्या 36, कि कहीं ऐसा न हो कि भारतीय स्त्रियां अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से उत्तप्त होकर पाश्चात्य ढंग के जीवन को अंगीकृत कर ले। पैराग्राफ चेन, आला रामजी दास वैश्यकृत सुघड़ गवारिन 1938, जमींदारों की धृष्टता, कारिंदों की करतूते और मुकदमेबाजी पर आधारित है। इसमें लेखक ने हिंदू संस्कृति के अनुरूप आदर्श स्त्री का चित्रण सामने रखा है, अतः उसे एक स्त्री उपयोगी शिक्षाप्रद उपन्यासों की कोटि में रखा जा सकता है। देवनारायण द्विवेदी कृत दहेज 1939, दहेज प्रथा की विभीषिकाओं को लेकर लिखा गया है। इसमें लेखक ने निष्पादित किया है कि निर्धन पिताओं की गुणवान लड़कियां अपात्रों के गले मर दी जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ दहेज ही के कारण धनवानों के बहुत से सुपात्र युवक सुशील संस्कारी तथा सुंदर पत्नियों से वंचित रह जाते हैं। पैराग्राफ चेंज, गोविंद वल्लभ पंत के जुनिया ब्रैकेट में 1940 उपन्यास में उत्तराखंड के डोम जाति के लोगों के आर्थिक लैंगिक शोषण को लेखक ने रेखांकित किया है। इसमें लेखक ने भूमिहीन किसानों की त्रासदी को भी रखा है। जमीन तो सारी गुसाई जी की है, फलतः कई एकड़ भूमि में हल चलाने के बावजूद किसान भूखा का भूखा ही रह जाता है। उनकी यह भुखमरी उनकी स्त्रियों के लैंगिक शोषण के कारण भूत बनती है। पैराग्राफ चेंज, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के अनुज बंधु चंद्रसेन कृत जीवन तप उपन्यास समाज की विविध कुरीतियों जैसे बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि को चित्रित करने वाला उपन्यास है। हिंदू समाज इन कुप्रथाओं से जर्जर हो रहा है और हजारों नारियां इन कुप्रथाओं के परिणाम स्वरूप अपने भाग्य को कोसती और तड़पती रहती हैं। इस उपन्यास में लेखक ने भारतीय नारी की विभीषिकाओं को भली भांति चित्रित किया है। ठीक उसी तरह कल्याण सिंह शेखावत द्वारा प्रणीत किसकी भूल उपन्यास में हिंदू विधवाओं पर हो रहे अत्याचारों का यथार्थ वर्णन किया है। पैराग्राफ चीन नारी जीवन से जुड़ा हुआ एक उपन्यास है देवदासी। इसके लेखक नरसिंह राव शुक्ल ने नारी जीवन से संबद्ध एक अन्य आयाम को यहाँ चिन्हित किया है। दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा के अंतर्गत गरीब निम्न वर्ग की सुंदर स्त्रियों का लैंगिक शोषण होता है। वस्तुतः इन देवदासियों का जीवन वेश्याओं के समान ही होता है। मंदिर के पुजारी तथा गांव के मंदिर से जुड़े हुए बड़े लोग इन देवदासियों का उपभोग करते हैं। अतः यदि कुछ इतिहासकार उन्हें धार्मिक वेश्याओं का दर्जा देते हैं तो उसमें अत्युक्ति बिल्कुल नहीं है। पैराग्राफ चेन नारी चेतना की दृष्टि से सर्वदानंद वर्मा द्वारा प्रणीत संस्मरण तथा नरमेध नामक उपन्यास भी महत्वपूर्ण है। प्रथम उपन्यास में उन्होंने अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए भारतीय एवं पाश्चात्य नर नारी के संबंधों को विश्लेषित किया है और यह बताने का यत्न किया है कि जहां पश्चिम के नर नारी के संबंधों में मित्रता का भाव मिलता है वहां अपने यहाँ उसमें स्वामी और दास का संबंध दृष्टिगोचर होता है। नरमेध उपन्यास में उसका नायक देवेंद्र अपनी पत्नी को शिक्षिका के पद के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि वह प्रगतिवादी विचारों का है और सोचता है कि स्त्री की गुलामी के अनेक कारणों में एक उनकी आर्थिक पर निर्भरता है। पृष्ठ संख्या 37 डॉक्टर मन्ननाथ गुप्त ने सेवा सदन की आलोचना करते हुए सुमन के अधःपतन के कारणों में यही प्रमाणित किया है कि भारतीय स्त्री आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर निर्भर रहती है। जब वह अवलंब हट जाता है तब स्त्री के पास सिवाय अपने शरीर के और कोई रास्ता नहीं होता, विशेषकर स्त्री यदि कुलीन जाति की है। स्मरण रहे कि सुमन का पालन एक मध्य वित्त वर्ग की लड़की के रूप में हुआ था, उसमें उपार्जन की क्षमता नहीं थी। उसे जो कुछ भी शिक्षा दी गई थी वह केवल इतनी ही थी कि वह जिस किसी पुरुष के गले बंध जाए उसकी लौंडी बनकर रह सके। कुमारी अवस्था में पिता की, यौवन में पति की और उसके बाद पुत्र की अधीनता में रहने के लिए जो और जितनी शिक्षा उपयुक्त है वह और उतनी ही शिक्षा उसे मिली थी। वह स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। ऐसी हालत में जब पति ने उसको निकाल दिया, फिर जहां आश्रम में गई वहां से भी निकाल दी गई, तो उसके लिए इसके अतिरिक्त और क्या चारा रहा कि या तो वह आत्महत्या कर ले या वैश्या जीवन ग्रहण करे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद व्यक्ति और साहित्यकार डॉक्टर मन्ननाथ गुप्त पृष्ठ संख्या 165-166। पैराग्राफ चीन सन 1941 तथा 1944 में अज्ञेय के दो उपन्यास आए, शेखर एक जीवनी भाग एक तथा शेखर एक जीवनी भाग दो। इसमें लेखक ने शेखर नामक एक अत्यंत आधुनिक पात्र को पाठकों के सम्मुख रखा है। प्रस्तुत उपन्यास के नारी पात्र टाइप न होकर एक विशेष परिवेश से जुड़े हुए हैं, जिसे हम अभिजात वर्ग कहते हैं। ये सुशिक्षित एवं विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक एवं सौंदर्य की दृष्टि रखने वाले चिंतनक्षम पात्र हैं। इस प्रकार अज्ञेय द्वारा बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। पैराग्राफ चेंज उपर्युक्त उपन्यासों के अतिरिक्त सन 1947 से पूर्व के नारी प्रधान उपन्यासों में विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखित संघर्ष ब्रैकेट में 1945, श्रीनाथ सिंह विरचित प्रभावती 1941, यशपाल कृत दिव्या 1945, उषा देवी मित्रा कृत पथचारी 1940 तथा आवाज 1941, रामेश्वर शुक्ल अंचल कृत चढ़ती धूप 1945 तथा नई इमारत 1947 आदि उपन्यासों को परिगणित कर सकते हैं, जिनमें नारी जीवन की विविध समस्याओं का आकलन है।